विक्टोरिया राज्य वॉलेंट्री यूथनेशिया को कानूनी रूप देने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य बनने वाला है, क्योंकि राज्य की संसद के अपर हाउस ने इस बाबत बिल को पास कर दिया। इस कानून के द्वारा टर्मिनली इल एडल्ट व्यक्ति जिसके 6 महीने से कम जीने के बचे हों, वे वॉलंटरी यूथनेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस लोअर हाउस को अगले हफ्ते उम्मीद के अनुसार अमेंडमेंट्स को पास कर 18 महीने की लंबी कवायद को मुकाम पर पहुंचाना है। ये कानून 2019 से प्रभावी होगा। बिल पास होने की घोषणा संसद में आंसुओं में सराबोर लेकिन गर्वित तरीके से हुई।
The result of the division is ayes 22, noes 18. I therefore declare that the bill has been passed on the third reading.
लेबर सरकार द्वारा इस बिल को पेश करने से लेकर अब तक इस पर करीब 60 घंटे संसद में बहस हो चुकी है। लोअर हाउस में प्रस्तावित अमेंडमेंट्स के अगले हफ्ते पास होने के बाद इस स्कीम को अगले 18 महीने में लागू कर दिया जाएगा। लेबर प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज कहते हैं कि ये एक इमोशनल लेकिन ऐतिहासिक समय है।
It's about providing to those who for too long have been denied a compassionate end and the control, the power over the last phase of their journey. It's about giving to them that control, that care, that compassion and ultimately the respect to allow them to write that final chapter of their journey.
वे एडल्ट जो फैसला लेने में सक्षम हैं और असहनीय टर्मिनल इलनेस के कारण 6 महीने ही जी सकते हैं, वे इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो 18 साल से कम उम्र के हैं और विक्टोरिया में 12 महीने से कम समय से रह रहे हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे। पेशेंट्स को कई डॉक्टर्स असिस्ट करेंगे, जिनमें एक का स्पेशलिस्ट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक रिव्यू बोर्ड भी प्रक्रिया के हर हिस्से पर नजर रखेगा। ग्रीन्स एमपी कॉलीन हार्टलैंड ने इस मुद्दे पर कड़ी मेहनत की है।
Now we can look people in the face who have terminal cancer and tell them they have a choice, that they don't have to suffer in those last weeks. We've all had friends and families who have had the most excruciating deaths. Now we can give them real relief.
शायद इसीलिए ग्रीन्स पार्टी के नेता रिचर्ड डी नेटले ने भी खबर का स्वागत किया। इस प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ पेनल्टीज की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस फैसले से सभी खुश नहीं हैं। यदि टर्मिनली इल व्यक्ति के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति या मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टेड डाइंग प्रक्रिया को शुरू करता है, तो उनके लिए उम्र कैद का प्रावधान है। और यदि कोई किसी को इस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए उकसाता है, तो उसे भारी जुर्माने के साथ 5 साल की जेल भी होगी। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स इस स्कीम को अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे, उनकी भी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने बिल का विरोध किया है और इसके पास होने पर अपनी नाखुशी 2GB पर बताई।
I hope that a future Victorian Parliament might reverse this. Certainly the medical profession is going to be very much diminished. Doctors should be healers. They should never be required to be killers.
ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट स्टीफन पार्नेस ने एबीसी से कहा कि उन्हें पास हुए बिल में कई खामी नजर आती हैं।
I think one is that the vulnerable are inadequately protected from things like subtle coercion, access to appropriate diagnosis as well as provision of care.
श्री पार्नेस कहते हैं कि विक्टोरिया का पैलेटिव केयर सिस्टम ठीक नहीं है और जो लोग क्षेत्रीय इलाकों में रहते हैं, उन्हें असिस्टेड डाइंग सर्विस को एक्सेस करने में काफी मुश्किल होगी।
Depending on where you are, for example, regional Victoria, you don't have the appropriate availability of palliative care services. And I and others have argued that if that is provided, then that becomes the insurance policy.
Victoria में करीब 40,000 लोग हर साल मरते हैं। इनमें से लगभग 10,000 लोगों को adequate palliative care नहीं मिल पाती। पिछले दो दशकों में राज्य की संसद में वॉलंटरी यूथेनेशिया कानून को पास कराने की 50 से अधिक कोशिशें हुई, लेकिन सभी 80% जनता के समर्थन के बावजूद असफल रही। पिछले ही हफ्ते न्यू साउथ वेल्स में ऐसा ही बिल संसद के अपर हाउस में एक मत से गिर गया था। मेलबर्न स्थित भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समाज के मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह कहते हैं,
मेरे विचार में ये जो असिस्टेड डाइंग बिल कल विक्टोरिया के अपर हाउस में पास हुआ है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है। एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आज के समय में, आज के दौर में ऐसे एक कानून की सख्त जरूरत है जिसकी मदद उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें एक इनक्योरेबल, एक टर्मिनल बीमारी है और उस बीमारी की वजह से वो अपना बाकी जीवन एक पीड़ा में गुजार रहे हैं, एक इनटॉलरेबल पेन के साथ जी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देता है, वो है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज द अंडरलाइंग पॉइंट, राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब ये तो समय ही बताएगा कि इस बिल में क्या खामियां हैं और इसका मिसयूज कौन कैसे कर सकता है। हालांकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिक्ट बिल इन द वर्ल्ड और इसमें बहुत सारे ऐसे सेफ गार्ड हैं कि जिसके रहते इसका मिसयूज करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के डे एंड एज में ऐसे हमें ये समझना चाहिए कि हमें ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जिसकी वजह से हम उन लोगों की मदद कर सकें जो कि इनक्योरेबल डिजीज और टर्मिनल डिजीज के साथ अपना बाकी कुछ बचा हुआ जीवन गुजार रहे हैं।